दिन भर तारीख 29 मार्च दिन शुक्रवार, मैं हूँ मानसी दास। अयोध्या पहुंची प्रियंका गांधी की महिलाओं और किसानों के मुद्दों पर बात।
कहा आवारा पशु की इतनी समस्या है दीदी कि हम रात को सो नहीं सकते, दिन में महिलाएं जाके बैठती हैं खेत में चौकीदारी करने के लिए और रात को हमें जाना पड़ता है ये, और सरकार व्यस्त है टी शर्ट बना रही है कि मैं भी चौकीदार।
कोरापुट पहुंचे मोदी ने जमकर साधा बीजेडी पर निशाना, साथ ही सुनवाएंगे विवेचना टीएन सेशन पर।
उसने इलेक्शन कमीशन को इंडियन पॉलिटिक्स के सेंटर में बिठा दिया, डरने लगे। उससे पहले जितने भी बड़े बड़े आप कहते हो दे वर जस्ट रूटीन वन मेंबर कमीशंस।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। अमेठी, रायबरेली और फैजाबाद के 3 दिवसीय दौरे पर गईं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फैजाबाद पहुंची। वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपने संसदीय क्षेत्र के लिए वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमरीका, जापान घूमते हैं लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र नहीं जाते। गुरुग्राम में 21 मार्च को होली के दिन एक मुस्लिम परिवार को पीटने के मामले में राजकुमार नामक एक अभियुक्त ने FIR दर्ज कराई है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि धारा 323, 324 और 34 के तहत कल ये FIR दर्ज की गई। FIR में कहा गया है कि राजकुमार की मुस्लिम परिवार ने पिटाई की थी। PNB बैंक धोखाधड़ी के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर आज लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई है। भारतीय प्रवर्तन निदेशालय और CBI की एक साझा टीम भी सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद है। बुधवार से नीरव मोदी HMP वेंट्सवर्थ की जेल की में हिरासत में थे। BBC संवाददाता गगन सबरवाल ने बताया कि भारत सरकार के वकीलों ने कहा है कि नीरव मोदी को जमानत मिलने पर वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख दंगों से जुड़े 186 मामलों की पड़ताल कर रही स्पेशल जांच टीम की जांच पूरी करने की समय सीमा और 2 महीने बढ़ा दी है। जांच टीम ने जस्टिस SA बोबड़े और जस्टिस S अब्दुल नजीर की बेंच को बताया कि 50% तक जांच पूरी कर ली गई है और पूरी जांच के लिए उन्हें 2 महीनों का और वक्त चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी गुहार स्वीकार कर ली। ब्रेक्जिट सौदे से जुड़े कई मुद्दों पर आज ब्रिटिश संसद में मतदान होगा। ब्रेक्जिट पर यह ब्रिटिश संसद में 3रा मतदान होगा। मतदान से पहले इस मुद्दे पर सदन में भारी बहस हुई है। ब्रेक्जिट समर्थित कंजर्वेटिव नेता इयान डंकन स्मिथ ने कहा है कि वो अनिच्छा से इस बार सौदे का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ब्रिटेन फिर कभी भी यूरोपियन यूनियन को नहीं छोड़ पाएगा। पूर्व ब्रेक्जिट सचिव डोमिनिक राब ने कहा कि वो सौदे का समर्थन करेंगे।
I will do so without prejudice.
मैं सौदे का समर्थन करूंगा, मैं किसी पक्षपात के बिना ये करूंगा ताकि आवश्यक परिणाम आ सकें। इसका उद्देश्य विस्तार करना और मई में यूरोपीय चुनावों को रोकना है। ये थे पूर्व ब्रेक्जिट सचिव डोमिनिक राब के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मोजाम्बिक सरकार ने कहा है कि इडाई चक्रवाती तूफान के बाद हैजा के मामले बढ़कर 139 हो गए हैं और सभी मामले सबसे अधिक प्रभावित तटीय शहर बियरा के हैं। हजारों लोग डायरिया से पीड़ित हैं जो हैजा के शुरुआती लक्षण हैं और इसके कारण 2 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उसका पहला लक्ष्य इस स्थिति का नियंत्रण करना है। वो अभी 10 लाख हैजा के टीकों का इंतजार कर रहा है जो अगले सप्ताह तक दिए जाएंगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के फंड का कहना है कि इस तरह की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए बहुत कम समय होता है। मोजाम्बिक के पर्यावरण मंत्री सेल्सू कोरिया का कहना है,
सो वी विल बी वैक्सीनेटिंग 800,000 पीपल।
हम 8 लाख लोगों को टीके लगाएंगे। बियरा शहर में हमारे पास अभी 100 से अधिक मामले हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्रों पर अब तक कोई मौत नहीं हुई है। दुर्भाग्य से कल ही हमारे पास 2 लोग आए थे जो बहुत बुरी स्थिति में थे, जिनकी जान पहले ही जा चुकी थी। ये थे मोजाम्बिक के पर्यावरण मंत्री सेल्सू कोरिया के शब्द। बुरुंडी में प्रशासन ने BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ काम करने वाले सभी पत्रकारों को प्रतिबंधित कर दिया है। नेशनल काउंसिल ऑफ कम्युनिकेशन ने कहा है कि प्रसारणकर्ताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचनाएं मुहैया कराने वाले बुरुंडी या विदेशी पत्रकार प्रतिबंधित रहेंगे। ये कार्रवाई BBC की एक डॉक्यूमेंट्री के बाद हुई है जिसे प्रशासन ने झूठा बताया है। पिछले साल प्रसारित हुई डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि राजधानी बुजुम्बुरा के एक गुप्त घर में सुरक्षा बलों ने हत्याएं की थी। प्रशासन का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री ने मीडिया कानून का उल्लंघन किया है। बुरुंडी में BBC की प्रसारण बीते 2 सालों से निरस्त है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। प्रयागराज से वाराणसी तक नाव से यात्रा करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रेल और रोड माध्यम से अमेठी रायबरेली होते हुए आज फैजाबाद यानी अयोध्या पहुंची। यहां उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की और गांव-गांव में जाकर लोगों से मुलाकात की। शाम के वक्त वो हनुमानगढ़ी पहुंची। उनकी यात्रा के एक बड़े हिस्से में शामिल रहे बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। जानते हैं उनसे कि प्रियंका का ये चुनावी दौरा कैसा रहा।
प्रियंका गांधी अपने तयशुदा प्रोग्राम से करीब डेढ़ घंटे देर से पहुंची, लेकिन इससे लोगों का उत्साह किसी तरह से कम नहीं था। धूप होने के बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे।
निर्मल खत्री कांग्रेस पार्टी
जिंदाबाद जिंदाबाद।
प्रियंका गांधी निर्मल खत्री
जिंदाबाद जिंदाबाद।
उसके बाद कुमारगंज से वो कई वहाँ गांवों के अंदर चली गई जहाँ नुक्कड़ सभाएं हुई उनकी तीन, और एक गांव में जो है उनकी चौपाल हुई अनुसूचित जाति के लोगों के साथ। उसके बाद उनकी एक पब्लिक रैली थी जहाँ करीब 4-5 हजार लोग इकट्ठा थे एक छोटे से मैदान में। वहाँ प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने किसानों की दिक्कतों की बात करते हुए कहा,
सब खेतों से गुजर के आई हूँ और मैंने वहाँ देखा खंबे लगे हुए हैं और तार लगे हुए हैं खेत पे। मैंने पूछा किस लिए लगाए हैं, कहा आवारा पशु की इतनी समस्या है दीदी कि हम रात को सो नहीं सकते। दिन में महिलाएं जाके बैठती हैं खेत में चौकीदारी करने के लिए और रात को हमें जाना पड़ता है ये, और सरकार व्यस्त है टी शर्ट बना रही है कि मैं भी चौकीदार, और किसान की ये हालत कर दी है।
उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जनता सर्वोपरि है और नेताओं को उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि जनता ही सबसे ताकतवर है।
अगर नेता ये भूल रहे हैं और अपने आप को बहुत अहंकारी और सत्ताधारी समझ रहे हैं तो किसका काम है सबक सिखाना,
जनता का,
जनता का,
आपका काम है,
जनता का काम।
तो यही मेरी शिकायत है कि मत भूलिए।
इसके बाद प्रियंका गांधी फैजाबाद के हनुमानगढ़ी गई और वहां जो है हनुमान के दर्शन किए वहां मंदिर में, और उसके बाद लखनऊ जा रही हैं। हालांकि इसको लेकर कुछ विवाद पैदा हो गया है, कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वो राम मंदिर क्यों नहीं गई, लेकिन इस पे कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि पहले नरेंद्र मोदी भी जब यहाँ आए हैं तो वो वहाँ नहीं गए हैं, और चूंकि हनुमान ही राम के सबसे बड़े भक्त थे इसलिए वहाँ जाना सबसे बेहतर है।
पूरी जानकारी दे रहे थे फैसल मोहम्मद अली। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के जयपुर जिले के कोरापुट में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। एक तरफ मोदी प्रदेश के मौजूदा बीजू जनता दल सरकार और कांग्रेस की जमकर आलोचना कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के ही एक नेता बीजू जनता दल में शामिल हो रहे थे। पूरी रिपोर्ट सुनिए हमारे सहयोगी संदीप साहू से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर और जनवरी में 3 बार ओडिशा का दौरा किया और तीनों बार अपना आक्रमण लगभग पूरी तरह से कांग्रेस पर केंद्रित किया, जबकि नवीन पटनायक सरकार के बारे में उन्होंने काफ़ी नर्म रुख अपनाया। यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री या सत्तारूढ़ बीजू जनता दल का नाम तक नहीं लिया। इसलिए आज सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि इस बार सत्तारूढ़ दल के प्रति उनका रवैया क्या होगा। चिटफंड घोटाले से खनिज घोटाले और पीएम किसान योजना से आयुष्मान भारत तक कई मुद्दों पर उन्होंने उड़ीसा की बीजद सरकार को जमकर लताड़ा।
क्या चिटफंड में घोटाला करने वाले, गरीबों की पाई पाई अपनी तिजोरी में भरने वाले उड़ीसा को मजबूत बना पाएंगे, उड़ीसा को मजबूती दे पाएंगे, उड़ीसा का भला कर पाएंगे।
वैसे प्रधानमंत्री ने नवीन पटनायक या बीजू जनता दल का नाम इस बार भी नहीं लिया, लेकिन सरकार पर निशाना साधने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।
2019 का ये चुनाव सिर्फ एक विधायक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केंद्र और राज्य में विकास का डबल इंजन लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के चुनाव का समय है।
लेकिन विडंबना की बात ये रही कि जिस समय मोदी जयपुर में उड़ीसा में भाजपा की सरकार लाने की बात कर रहे थे, लगभग उसी समय विधानसभा चुनाव के लिए उन्हीं के पार्टी के एक प्रत्याशी भाजपा छोड़कर बीजद में योगदान कर रहे थे। केंदुझर जिले के आनंदपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा प्रत्याशी भागीरथी सेठी ने 2014 के चुनाव से ठीक पहले बीजद छोड़कर भाजपा में योगदान किया था और आज वे दोबारा बीजद में वापस आ गए। अपने फैसले के बारे में उन्होंने ये सफाई पेश की। भाजपा छोड़ने का कारण ये है कि पार्टी में जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसमें मैं अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहा था। वैसे भी मैं बीजू परिवार का आदमी हूँ, बीजू बाबू का आदमी हूँ, इसलिए मैं अपने घर वापस आ गया। वैसे एक पार्टी का प्रत्याशी किसी दूसरी पार्टी में चले जाना अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि जब भाजपा के कार्यकर्ता को ही प्रधानमंत्री की बात और अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है तो आम लोग उन पर कैसे विश्वास करेंगे। संदीप साहू, BBC भुवनेश्वर।
और अब आपको बताते हैं कि आज और क्या अहम चुनावी हलचल हुई। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज दोपहर महागठबंधन में शामिल पार्टियों की सीटों की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के 19 सीटों की भी घोषणा की।
जो 19 सीटें जो राष्ट्रीय जनता दल जो लड़ रही हैं, भागलपुर, बांका, मधेपुरा, दरभंगा, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, सारण, हाजीपुर, बेगूसराय, पाटलिपुत्रा, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, झंझारपुर, अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर और आरा की सीट है वो जो है हम लोग CPI ML को देने का काम कर रहे हैं। गठबंधन नहीं, एज अ गुड गेस्चर हम लोग जो है CPI ML को ये सीट जो है देने का काम कर रहे हैं।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा समस्तीपुर, मुंगेर, पटना साहिब, सासाराम, वाल्मीकि नगर, सुपौल कांग्रेस के खाते में गई है। हम पार्टी को नालंदा, औरंगाबाद और गया और VIP पार्टी को मधुबनी, मुजफ्फरपुर और खगड़िया की सीटें मिली हैं।
BBC इंडिया बोल।
कांग्रेस ने की घोषणा, उसकी केंद्र में सरकार बनी तो सबसे गरीब 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे सालाना 72,000 रूपए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की इस न्याय नामक योजना का BJP ने उड़ाया मजाक, लेकिन क्या कांग्रेस इस चुनावी घोषणा का लाभ उठा पाएगी? BBC इंडिया बोल में चर्चा होगी इसी विषय पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शनिवार 30 मार्च को शाम 7:30 बजे मुफ्त कॉल करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
फिलहाल देश में वक्त है चुनावों का, और जब भी भारत में चुनाव व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी तो एक नाम लोगों को कभी नहीं भूलेगा, वो है TN सेशन का नाम, वो नाम जिससे सरकार भी थर्राती थी। भारतीय चुनाव व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो TN सेशन ही है। मतदाता पहचान पत्र हो या खर्चीले चुनाव प्रचार पर रोक हो या फर्जी मतदान और चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक हो, सबके पीछे TN सेशन का नाम लिया जाता है। आज की विवेचना में रेहान फजल याद कर रहे हैं TN सेशन से जुड़े कुछ रोचक प्रसंगों को।
I belong to that species of human being called the Palghat Brahmin. As I am fond of telling my audiences, the Palghat Brahmin comes in 4 varieties. They are cooks, they are crooks, they are civil servants or they are musicians.
मैं मानवों की उस प्रजाति का हिस्सा हूँ जिन्हें पालघाट ब्राह्मण कहा जाता है। इनकी 4 किस्में पाई जाती हैं: रसोइये, धोखेबाज, सिविल सर्वेंट और संगीतकार। मैं समझता हूँ मुझमें थोड़ी बहुत ये सारी खूबियाँ हैं। मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं थोड़ा बहुत धोखेबाज भी हूँ, मैं सिविल सर्वेंट हूँ, मैं संगीतकार भले ही ना हूँ लेकिन संगीत की समझ मेरे अंदर है।
ये हैं TN सेशन, जिन्होंने एक जमाने में एक बहुचर्चित जुमला बोला था, I eat politicians for breakfast, यानी मैं नाश्ते में राजनीतिज्ञों को खाता हूँ। भारतीय चुनाव व्यवस्था में आमूल बदलाव करने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो है TN सेशन। उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चंद्रशेखर सरकार में वाणिज्य मंत्री रहे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, जिन्होंने 60 के दशक में सेशन को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी था। 9 दिसंबर 1991 की रात को वो और रॉक्सना स्वामी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का प्रस्ताव लेकर सेशन के पंडारा रोड स्थित घर में गए थे। सेशन ये पेशकश सुनकर बहुत खुश नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि वो राजीव गांधी की राय लेकर बताएंगे कि उन्हें ये पद स्वीकार है या नहीं। सेशन की जीवनी सेशन एन इंटीमेट स्टोरी लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार के गोविंदन कुट्टी बताते हैं।
We had a raw deal from the VP Singh government. He had been confined to the planning commission. Then came the Chandrasekhar government.
VP Singh की सरकार ने उनके साथ बुरा सुलूक किया। उन्हें योजना आयोग में पटक दिया गया। चंद्रशेखर सरकार में वाणिज्य मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से सेशन को ये पद मिला। उन्होंने देर रात राजीव गांधी को फोन मिलाया। जब सेशन राजीव गांधी के घर पहुंचे तो वो अपने ड्राइंग रूम में थोड़ी उत्सुकता के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी बातचीत सिर्फ 5 मिनट चलने वाली थी, लेकिन बहुत जल्दी ये समय बीत गया। राजीव ने जोर से आवाज लगाई, द फैट फेलो इज हियर, क्या आप हमें कुछ चॉकलेट्स भिजवाएंगे? चॉकलेट सेशन और राजीव गांधी दोनों की कमजोरी थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद राजीव गांधी ने सेशन को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति दे दी, लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। घंटे भर बाद जब राजीव ने सेशन के बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला तो उन्होंने सेशन को छेड़ते हुए कहा, वो दाढ़ी वाला शख्स उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला किया था।
ये दाढ़ी वाले शख्स और कोई नहीं प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। टीएन सेशन के राजीव गांधी के नजदीक आने की भी एक दिलचस्प कहानी है। वो पहले वन और फिर पर्यावरण सचिव हुआ करते थे। वहां उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि राजीव ने आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय में उन्हें सुरक्षा सचिव बना दिया।
As security secretary, he began to do the job of someone who was more than a secretary. Like, you know, he became a security expert himself.
सुरक्षा सचिव के रूप में सेशन सचिव से कहीं बड़ा काम करने लगे। वे खुद सुरक्षा विशेषज्ञ बन गए। एक बार उन्होंने राजीव गांधी के मुंह से बिस्किट खींच लिया, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री को ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसका पहले परीक्षण न किया गया हो। एक बार 15 अगस्त को राजीव गांधी बहुत से लोगों के साथ विजय चौक से इंडिया गेट तक दौड़ने वाले थे। वो ट्रैक सूट पहने हुए थे। थोड़ी दूरी पर सेशन बंद गले के कोट और पतलून में सारा इंतजाम देख रहे थे। राजीव गांधी ने उन्हें देख कर मजाक किया, आप वहां क्या सूट बूट पहने खड़े हैं, आइए आप भी हमारे साथ दौड़िए, आपका मोटापा थोड़ा कम हो जाएगा। इस पर सेशन ने तपाक से जवाब दिया, कुछ लोगों को सीधे खड़े रहना पड़ता है ताकि देश का प्रधानमंत्री दौड़ सके। थोड़ी देर बाद वो हुआ जिसकी राजीव गांधी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अभी वो कुछ ही मिनट दौड़े होंगे कि सुरक्षा कर्मी उनके चारों तरफ घेरा बनाते हुए एक उन्हें ऐसी जगह ले गए जहां एक कार खड़ी थी जिसका इंजन चालू था। उन्होंने राजीव को कार में बिठाया और ये जा वो जा, एक मिनट के भीतर उन्होंने उनको उनके घर के अंदर पहुंचा दिया। ऐसा करते हुए सुरक्षाकर्मी राजीव गांधी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें ये हर हाल में करना होगा। सेशन के निर्देश थे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता।
मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के पहले ही दिन उन्होंने अपने पहले चुनाव आयुक्त रहे पेरी शास्त्री के कमरे से सभी देवताओं की मूर्तियां और कैलेंडर हटवा दिए। ये तब था जब सेशन खुद बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी आजाद प्रवृत्ति का पहला नमूना तब मिला जब उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन सरकार से बिना पूछे लोकसभा चुनाव स्थगित करा दिए। धीरे धीरे वो चुनाव आयोग के दफ्तर को सेंटर स्टेज में ले आए। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था,
One of my distinguished predecessors wrote to government and said he wanted sanction of 30 rupees to buy a book. That was the autonomy of the election commission. The election commission was treated as somewhat of a
चुनाव आयोग की स्वायत्तता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरे एक पूर्ववर्ती ने सरकार को पत्र लिखा कि उन्हें 30 रुपए की मंजूरी दी जाए जिससे वो एक किताब खरीद सकें। चुनाव आयोग के साथ सरकार के पिछलग्गू जैसा बर्ताव किया जाता था। मुझे याद है जब मैं कैबिनेट सचिव था, प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाकर कहा कि मैं चुनाव आयोग को बता दूं कि मैं फला फला दिन चुनाव करवाना चाहता हूं। मैंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, हम चुनाव आयोग को सिर्फ ये बता सकते हैं कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है। मुझे याद है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कानून मंत्री के दफ्तर के बाहर बैठकर इंतजार किया करता था कि उसे कब अंदर बुलाया जाए। मैंने कहा, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार हूं, बशर्ते हमारे साथ सम्मान का व्यवहार हो। हमारे दफ्तर में सभी लिफाफों पर लिख कर आता था, चुनाव आयोग, भारत सरकार। मैंने उन्हें साफ कर दिया कि मैं भारत सरकार का हिस्सा नहीं हूँ।
1992 के शुरू से ही सेशन ने सरकारी अफसरों को उनकी गलतियों के लिए लताड़ना शुरू कर दिया था। उसमें केंद्र के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल थे। एक बार शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव के धर्मराजन को त्रिपुरा में हो रहे चुनावों का पर्यवेक्षक बनाया गया, लेकिन वो अगरतला जाने के बजाय एक सरकारी यात्रा पर थाईलैंड चले गए। टीएन सेशन ने आदेश दिया।
श्री धर्मराजन जैसे अफसरों को ये गलतफहमी है कि चुनाव आयोग के अंतर्गत उनका काम एक तरह का स्वैच्छिक काम है, जिसे वो चाहें तो करें या न करें। वो अगर सोचते हैं कि विदेश जाना या उनके विभाग का काम चुनाव आयोग के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनकी इस गलतफहमी को ठीक किया जाना चाहिए। उनको इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने इस विकल्प का इस्तेमाल न करते हुए उनकी गोपनीय रिपोर्ट में विपरीत प्रविष्टि करने का फैसला किया है।
सेशन के इस आदेश से सत्ता के गलियारों में तहलका मच गया, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था। 2 अगस्त 1993 को रक्षाबंधन के दिन टीएन सेशन ने एक 17 पेज का आदेश निकाला कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देती, तब तक देश में कोई भी चुनाव नहीं कराया जाएगा। सेशन ने अपने आदेश में कहा,
जब तक वर्तमान गतिरोध दूर नहीं होता, जो कि सिर्फ भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, चुनाव आयोग अपने आप को अपने संवैधानिक कर्तव्य निभा पाने में असमर्थ पाता है। उसने तय किया है कि इसके नियंत्रण में होने वाले हर चुनाव, जिसमें राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव, जिनके कराने की घोषणा की जा चुकी है, आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगे।
इस आदेश पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट का चुनाव नहीं होने दिया, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु इतने नाराज हुए कि उन्होंने उन्हें पागल कुत्ता कह डाला। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा, हमने पहले कारखानों में लॉकआउट के बारे में तो सुना था, लेकिन सेशन ने तो प्रजातंत्र को ही लॉकआउट कर दिया है। सरकार ने इसका तोड़ निकालने के लिए चुनाव आयोग में 2 और चुनाव आयुक्तों GVS कृष्णमूर्ति और MS गिल की नियुक्ति कर दी। सेशन उस दिन दिल्ली से बाहर पुणे गए हुए थे। बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त बने MS गिल याद करते हैं।
मैं एग्रीकल्चर सेक्रेटरी था। मैं उस दिन ग्वालियर गया था, तो जब मैं यहाँ से चढ़ के ग्वालियर स्टेशन पे उतरा तो कमिश्नर ग्वालियर वॉज वेटिंग फॉर मी। तो उन्होंने मुझे कहा, जी घर चले कॉफी पिए। घर जाके उन्होंने कहा, जी अमरनाथ वर्मा जो मेरे से 1 साल सीनियर था और मेरा दोस्त था, उनसे बात करो। तो मैंने बात करी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था नरसिम्हा राव का। उन्होंने कहा, भाई तुम वापस आ जाओ, मैं आपको प्लेन भेज देता हूँ छोटा। तो मैं 3-4 बजे वहाँ पहुँच गया। ऑर्डर उन्होंने बना चुके थे, मैं और GVG कृष्णमूर्ति एज कमिश्नर्स। जो कृष्णमूर्ति था वो पहले ही जाके चार्ज ले चुका था, वो उतावला था कि नौकरी ले।
कृष्णमूर्ति ने पद संभालते ही राष्ट्रपति से शिकायत की कि उन्हें आयोग में बैठने की जगह नहीं दी जा रही। उनकी सेशन से पहली मुलाकात भी हासी कटु रही।
सेशन तो इतना गर्म हो गया, क्योंकि उसको टेम्पर बहुत के भई ये मेरे से क्या हो गया, नरसिम्हा राव के खिलाफ ये वो, और स्टे ऑर्डर वो ले नहीं सका, अगर तो यहाँ होता तो कुछ करता या ना करता। वो तो बिल्कुल ही गुस्से में, वो जो शिवजी का तांडव है ना, तो वो नाचने लगा कई किस्मों से, और वो छोटी छोटी बात पे लड़ता था, इनको कमरा मत दियो, कमरा इधर दियो, उधर मत दियो।
टीएन सेशन ने इन दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ सहयोग नहीं किया। हद तब हो गई जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने इन दो लोगों के बजाय उपचुनाव आयुक्त DS बग्घा को अपना चार्ज दिया।
मैं तो सेशन से भी बात करता था, क्योंकि हमारा IAS का और मेरी वो रिस्पेक्ट करता था, एंड आई ऑल्सो ट्रीटेड इन द वे द CEC शुड बी ट्रीटेड। सेशन गया हुआ था अमेरिका, तो वो बग्घा को इंचार्ज बना गया। अब 2 कमिश्नर बैठे हैं प्रेसिडेंट के अपॉइंटेड, तनख्वाह ले रहे हैं, तो वो हमें नहीं कह के गया, वो बग्घा को हाउ कैन अ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर टेक ओवर, बट ही वॉज डूइंग इट। जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, उन्होंने हैरान हो गए कि यार ये तो हद ही है, तो फिर उन्होंने उस ऑर्डर में कहा, दोनों का ऐसा झगड़ा रहता था, गिल अलोन ट्राइड टू कैरी इट फॉरवर्ड एंड टेल देम कि यार कुछ काम कर लें। फिर उन्होंने अखीर में ऑर्डर कहा कि जब तक सेशन वहां है गिल विल होल्ड द चार्ज।
बहरहाल इन दो चुनाव आयुक्तों के रहते टीएन सेशन ने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके बारे में कहा जाता था कि भारतीय राजनेता सिर्फ दो से डरते हैं, पहला ईश्वर और दूसरा सेशन। लेकिन सेशन का मानवीय पक्ष भी था। वो कर्नाटक संगीत के शौकीन थे, उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा करने का बहुत शौक था।
वो कहा करते थे कि मैं जितना संभव हो उतने टेलीफोन जमा करना चाहता हूँ। यही हाल दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी था। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल करने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए खरीदे जाते थे। उनके पास 4 टीवी सेट थे, उनमें से वो किसी को दिन में 2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। उनकी हर दूसरी मेज या अलमारी में एक स्टीरियो रिकॉर्डर रखा रहता था। उनका फाउंटेन पेनों का संग्रह तो नायाब था। जो भी बच्चा उनके घर आता उसको वो अक्सर एक पेन भेंट में देते, जबकि वो खुद एक बेहद साधारण बॉल पेन से लिखते थे। सिर्फ वयस्क होने के प्रतीक के तौर पर वो एक मामूली घड़ी पहनते थे, जबकि उनकी अलमारी में दुनिया की एक से एक महंगी घड़ियां पड़ी रहा करती थीं। चीजें जमा करना उनका शौक था, उनका इस्तेमाल करना नहीं।
सेशन ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव किसी को नहीं बख्शा। उन्होंने बिहार में पहली बार 4 चरणों में चुनाव करवाए और 4 बार तारीखें बदली गईं। ये बिहार के इतिहास का सबसे लंबा चुनाव था। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
विवेचना की आज की कड़ी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। और अब चलते चलते सुनते हैं खेल की खबरें।
जी मानसी जी, अगर बैडमिंटन की बात की जाए तो इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए, जहां चीन के हुआंग जू झियांग ने 7वीं वरीयता हासिल थाईलैंड के खोसित फेद प्रादप को 21-16, 21-15 से हराया। एक अन्य मुकाबले में 3री वरीयता हासिल भारत के के श्रीकांत ने भारत के ही बी साई प्रणीत को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और इसके अलावा पी कश्यप चीन ताइपे के वांगजू वेई के खिलाफ मुकाबला खेल रहे थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला होना जहां HS प्रणय डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन का सामना करेंगे। महिला एकल वर्ग में थोड़ा समय लगेगा परिणाम जानने के लिए, जहां दूसरी वरीयता हासिल भारत की स्टार महिला खिलाड़ी PV सिंधु का सामना डेनमार्क की मिया बिलिचफेल्ड से होगा। उधर सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के आखिरी पूल मैच में आज भारत ने पोलैंड को 10-0 से हराकर हॉकी का पाठ पढ़ाया। और अगर क्रिकेट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान इस समय दुबई में 4थे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने में व्यस्त हैं, जहां टॉस जीतकर हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी देर पहले 43 ओवर में 5 विकेट खोकर 215 रन बना लिए थे। ग्लेन मैक्सवेल 66 और एलेक्स कैरे 31 रन बनाकर नाबाद हैं। उधर अगर IPL की बात की जाए तो थोड़ी ही देर बाद राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ताज़ा समाचार यह है कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि उनकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेगी और उसके बाद उसका बचाव करने की कोशिश करेगी। आज के मुकाबले में नज़र रहेगी स्टीव स्मिथ पर और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन के अलावा डेविड वार्नर और जॉनी पेरेस्टो पर।
खेल की खबरों के लिए धन्यवाद आदेश कुमार गुप्त। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर मोहम्मद शाहिद से।
BBC समाचार। ब्रेक्जिट सौदे से जुड़े कई मुद्दों पर ब्रिटिश संसद में मतदान जारी है। ब्रेक्जिट पर यह ब्रिटिश संसद में 3रा मतदान है। मतदान से पहले इस मुद्दे पर सदन में भारी बहस हुई है। अमेठी, रायबरेली और फैजाबाद के 3 दिवसीय दौरे पर गई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फैजाबाद पहुंची। वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपने संसदीय क्षेत्र के लिए वक्त नहीं है। गुरुग्राम में 21 मार्च को होली के दिन एक मुस्लिम परिवार को पीटने के मामले में राजकुमार नामक एक अभियुक्त ने FIR दर्ज कराई है। FIR में कहा गया है कि राजकुमार की मुस्लिम परिवार ने पिटाई की थी। PNB बैंक धोखाधड़ी के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई है। भारतीय प्रवर्तन निदेशालय और CBI की एक साझा टीम भी सुनवाई के लिए कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख दंगों से जुड़े 186 मामलों की पड़ताल कर रही स्पेशल जांच टीम की जांच समय सीमा पूरी करने की अवधि 2 महीने और बढ़ा दी है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला रविशंकर कुमार ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत कल सवेरे, तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।